समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं, मैं और आप, कि हम एक नई सुबह देखने के लिए आज फिर तैयार हो चुके हैं। आज के संग में सरबजीत कौर के साथ मैं हूं नवीन सक्सेना।
हेलो लिसनर्स एंड वेरी वार्म वेलकम to all our lovely listeners tuned to Akashvani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashvani network. As Naveen just said, we are here once again with our daily news magazine program Aaj Savere, wherein in the next half an hour we shall bring you the latest in national and international news, metro city updates, and of course towards the end of the program we shall flip the pages of history to see what makes 3rd of April so memorable.
सरबजीत, हर दिन अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन उस दिन को और खूबसूरत अगर बना दिया जाए तो उसका आपको हमारे साथ साथ देना होगा। आज सवेरे के आज के इस संस्करण में एक बहुत ही सुंदर सी बात मैं अपने लिसनर्स के साथ आज शेयर करना चाहता हूं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और शांति पथ के आसपास रहते हैं तो एक बार वहां का चक्कर जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इतने खूबसूरत फूल आपका इंतजार कर रखे हैं ना, ऐसा लगता है कि दोनों क्यारियां हैं लाल रंग की और उनके बीच में सफेद रंग के फूलों की एक नदी सी बहती जा रही है। एंड इफ यू वॉक इन द मॉर्निंग ना सरबजीत, लवली लवली, बहुत सुंदर लगता है। और हाँ, जैसा सरबजीत ने कहा, कार्यक्रम के अंत में आज हम उन व्यक्तित्वों को याद करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। कुछ हमारे बीच में हैं, कुछ हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी यादें कुछ ना कुछ हमको जरूर कहती है। और हां सरबजीत, एक छोटा सा हिंट देते हैं, आज हम याद करेंगे उस सेना नायक को जिसकी सूझबूझ और सैन्य कुशलता ने एक नए राष्ट्र का निर्माण किया। एक छोटी सी झलक सुनते हैं।
मेरा नाम क्या?
हरका गुरु साहब।
हरका गुरु, मेरा नाम क्या?
वाकई आज हम याद करेंगे सैम बहादुर को। और सैम बहादुर को क्यों याद करेंगे, हमारे साथ सुनते रहिए, ठीक कार्यक्रम के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे। बहरहाल, नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से पूरे देश में चल रही है। पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो चुका है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तराखंड के रुद्रपुर और राजस्थान के कोटपुतली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि ये आम चुनाव नहीं है, बल्कि विकसित भारत और विकसित राजस्थान का चुनाव है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव भारत को विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है।
In some more related news, in Jammu and Kashmir, Chief Electoral Officer CEO PK Pol visited the border district Rajouri yesterday to supervise the arrangements being made for the forthcoming parliamentary polls. Akashvani Jammu correspondent reports that the CEO also assessed the status of district election team while chairing a review meeting with all the concerned officers and reviewed arrangements related to the conduct of Lok Sabha elections 2024 in the district. The meeting also reviewed the status of all assured minimum facilities at all the polling stations.
मध्य प्रदेश की बात करें तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 7 संसदीय सीटों के लिए 27 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इन सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो चुका है और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास पूरे जोर शोर से चल रहा है। वहीं निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव में भ्रामक सूचनाओं के प्रसार से निपटने के लिए मिथक और वास्तविकता के नाम से एक प्लेटफॉर्म की शुरूआत की है। इसे निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसके जरिए सूचनाओं की पुष्टि, भ्रामक सूचनाओं और मिथकों के प्रसार को रोकने लगाने के और आम चुनावों के दौरान प्रमुख मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
US President Joe Biden and UK Prime Minister Rishi Sunak have condemned the killing of 7 humanitarian aid workers in Gaza by the Israel's assault. The US President said he was outraged and heartbroken and accused Israel of not doing enough to protect aid workers. Israel has promised an independent investigation after the UK, US, Canada, Australia and Poland lost nationals in yesterday's attack. Three of the killed aid workers were British nationals, one each from Poland, Australia and Palestinian and a US-Canadian citizen. Acknowledging that Israel's forces had hit innocent people, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has pledged an independent investigation. Israeli President Isaac Herzog has apologized for the deaths. Mr. Biden called for Israel's investigation to be conducted swiftly and said it must bring accountability and its findings be made public. UK Prime Minister Rishi Sunak spoke to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu yesterday and demanded a thorough and transparent independent investigation into the killing of the aid workers. Mr. Sunak added that Israel needed to end restrictions on humanitarian aid and protect civilians. Australian Prime Minister Anthony Albanese, Canadian Prime Minister Justin Trudeau and Polish Foreign Minister Radoslaw Sierzewski have also condemned the killing of aid workers.
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने कल जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडेनॉम घेब्रेयेसस से मुलाकात की। भारत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि दोनों नेताओं ने पारंपरिक चिकित्सा और डिजिटल स्वास्थ्य सहित वैश्विक स्वास्थ्य में भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की। नेपाल की संघीय संसद के निचले सदन ने बिम्स्टेक चार्टर को बहुमत से पारित कर दिया है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने कल बिम्स्टेक चार्टर को निचले सदन में पेश किया। और अब खेलों की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। कल आईपीएल में बहुत कुछ हुआ है और आईपीएल की कुछ खास खबरों के साथ इस समय इशारा कर रही हैं सरबजीत, क्योंकि उनके पास कुछ लेटेस्ट डिटेल है। सरबजीत।
यस नवीन, इन आईपीएल क्रिकेट लखनऊ सुपर जायंट्स डिफीटेड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बाय 28 रन्स at the M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru last evening. Chasing a target of 182, Bengaluru were all out for 153 runs in 19.4 overs. Delhi Capitals will face Kolkata Knight Riders today at the YS Rajashekhar Reddy Cricket Stadium in Vishakhapatnam. The match will start at 7:30 p.m.
और अब रुख करते हैं महानगरों की खबरों का। बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद की खबरों के साथ हैं सरबजीत, और उसके बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता मेरे साथ।
यस नवीन, लेट्स शेयर द न्यूज फ्रॉम चेन्नई फर्स्ट। कंसल्टेंट इंटरवेंशनल पल्मोलॉजिस्ट डॉ तमिलरासन हैज स्टेटेड दैट ड्यूरिंग कोविड 19 असिस्टिव गैजेट्स प्लेड अ ह्यूज पार्ट इन डायग्नोसिस ऑफ सेवरल प्रॉब्लम्स। During the NIT Tiruchi Diamond Jubilee celebrations, he stressed the importance of having advanced training in pulmonary medicine and bronchoscopy to effectively perform non-invasive ventilation, sleep studies, and other diagnostic procedures. These procedures ensure accurate diagnosis and customized treatment plans for patients, with an emphasis on improved quality of life and lung health. Dr. Tamilarasan also emphasized the significance of conducting research in India using cutting-edge models, measurements and control procedures, as well as some of the difficult research issues related to pulmonary disorders. Researchers from the Indian Institute of Technology Madras have found a significant increase in the number of C-section births that occurred nationwide between the years 2016 and 2021. Researchers from the Institute's Department of Humanities and Social Sciences conducted the investigation. The reputable peer-reviewed publication, BMC Pregnancy and Childbirth, published the study's findings. Making an incision in the mother's abdomen to deliver one or more babies is known as a cesarean section delivery. When the operation is medically necessary, it can save lives, but when it's not absolutely essential, it can strain the already limited public health resources, result in needless spending, and have a large number of negative health effects. Moving on to news from Bengaluru, the Indian Met Department has issued a heat wave alert till April 5th in Karnataka. Kalburgi district recorded the highest of 41.6 degrees Celsius yesterday. Bengaluru recorded a maximum temperature of 35.1 degrees Celsius yesterday. The city recorded 36.6 degrees Celsius temperature on March 31st, which is next only to the highest temperature of 37.2 degrees reported on March 26th of 2017. The Met Department has foreseen the possibilities of light rain in Uttara Kannada, Belagavi, Dharwar and other parts of North Interior Karnataka in the coming days. The 6th Broadband Committee discussed the issues pertaining to expansion and creation of new telecom infrastructure in the state of Telangana. Presiding over the meeting, Telangana Chief Secretary Santi Kumar said, with a tele density of 108.19%, Telangana ranks second in the country. Telangana is leading other states in many telecom indicators like tower density and mobile connectivity, with 97.4% of villages covered with mobile connectivity. There has been a quantum jump in the growth of telecom towers, with a total of 1,448 towers being added in the current financial year. And Naveen, what's the news that you're going to share with our listeners today?
सबसे पहले बात दिल्ली की. प्रवर्तन निदेशालय ने कल दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और अन्य लोगों की लगभग 9 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया. ईडी ने यह कार्रवाई धनशोधन निरोधक अधिनियम के तहत की है. आरोप है कि जगदीश कुमार अरोड़ा ने अपने कार्यकाल में फ्लो मीटर के अनुबंध की बढ़ी हुई कीमत पर एक निजी कंपनी को 38 करोड़ रुपए दिए थे. राजधानी के सदर बाजार क्षेत्र में कल एक घर में आग लगने से 2 बच्चियों की मृत्यु हो गई. दमकल विभाग ने बताया कि दोपहर 2 बजे के करीब उन्हें आग लगने की सूचना मिली. आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 5 गाड़ियों को करीब 1 घंटा लगा. दिल्ली विश्वविद्यालय ने 37वें राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव हुनर में शास्त्रीय संगीत के एकल श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है. इसके अलावा विश्वविद्यालय ने शास्त्रीय नृत्य श्रेणी में भी पहला स्थान प्राप्त किया. दूसरी ओर वोकल सोलो श्रेणी में डीयू की टीम दूसरे स्थान पर रही. 28 मार्च से 1 अप्रैल तक लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित इस उत्सव में दिल्ली विश्वविद्यालय की टीमों ने कुल 4 श्रेणियों में भाग लिया था. मुंबई का रुख करते हैं. महाराष्ट्र में 19 अप्रैल को 5 संसदीय क्षेत्रों के लिए चुनाव होने हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अप्रैल को रामटेक निर्वाचन क्षेत्र में राज्य में अपनी पहली सार्वजनिक रैली करेंगे. 14 तारीख को डॉ बीआर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर श्री मोदी नागपुर में दीक्षा भूमि का दौरा करेंगे और चंद्रपुर जिले में एक रैली को संबोधित करेंगे. वहीं मध्य रेलवे के महाप्रबंधक रामकरण यादव ने पिछले महीनों के दौरान अप्रिय घटनाओं को रोकने और ट्रेन संचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके योगदान के लिए मध्य रेलवे के 9 कर्मचारियों को सम्मानित किया. कल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में आयोजित एक समारोह में मुंबई, नागपुर, पुणे, सोलापुर डिवीजन के 2-2 सदस्यों और भुसावल डिवीजन के 1 सदस्य को पुरस्कार दिए गए. कोलकाता का रुख करें तो पश्चिम बंगाल के लिए आम चुनाव के लिए विशेष महापर्यवेक्षक आलोक सिन्हा आज कोलकाता पहुंचेंगे. पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफ्ताब और अन्य अधिकारी करीब 10 बजे दमदम एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे. राज्य के सीईओ कार्यालय ने आज किसी भी बैठक की पुष्टि नहीं की है. श्री आलोक सिन्हा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं. तो ये थी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की खबरें. आज सवेरे का एक और पन्ना पलटते हैं और आपको बताते चलते हैं कि आज आपके क्षेत्र का, आपके राज्य का मौसम कैसा रहेगा, ताकि आप दिन भर को उसी हिसाब से प्लान कर सकें. सबसे पहले बात हम करते हैं दिल्ली की. तो दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है. न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. मुंबई में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. कोलकाता में भी लगभग यही हाल रहेगा, तापमान 27 और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.
वेल नवीन, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई. द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट 26 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्रीज. Bengaluru again is expected to have generally clear sky. The minimum temperature recorded at 24 degrees Celsius, maximum may go up to 36 degrees Celsius. And Hyderabad is also expected to have partly cloudy sky. The temperatures will hover between a minimum of 25 degrees and a maximum of 39 degrees Celsius.
और अब बातें आज के इतिहास की। हर दिन अपने आप में खास होता है, बहुत सी घटनाएं जुड़ी होती हैं, व्यक्तित्व जुड़े होते हैं और हम उनको इसलिए याद करते हैं ताकि हम उनसे कुछ न कुछ सीख सकें, क्योंकि हर गुजरा हुआ दिन हमें एक नया एहसास देके जाता है, एक नया एक्सपीरियंस देके जाता है। बात मोबाइल और कंप्यूटर की। मोबाइल और कंप्यूटर के बिना आज की दुनिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी और इन दो आविष्कारों ने जैसे दूर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की सूरत ही बदल दी। मजे की बात है कि सरबजीत के इन दोनों ही महान आविष्कारों का जो उत्पादन हुआ, जो उद्भव हुआ था, वो आज ही के दिन हुआ था। 1973 में वो आज ही का दिन था जब मार्टिन कूपर ने हैंड हेल्ड मोबाइल फोन से बेल लैब्स के जुएल एस एंजल को पहला फोन किया था और शायद उस वक्त मोबाइल टेलीफोन के बारे में कोई जानता ही नहीं था और कूपर को आज के मोबाइल फोन का जनक भी कहा जा सकता है। उस समय कूपर मोटोरोला कंपनी के लिए काम करते थे। अमेरिका में कार फोन का इस्तेमाल 1930 से हो रहा था लेकिन हैंड हेल्ड मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल था वो आज ही के दिन शुरू किया गया था।
नवीन, यू हैव स्टार्टेड दिस सेगमेंट विद द मेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सो आई लाइक टू ऐड इन हियर दैट ऑन दिस डे इन द ईयर 1966 फर्स्ट इंडियन मेड कंप्यूटर वॉज कमीशन्ड इन जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस।
और सरबजीत, ये भी एक इत्तेफाक है कि 1981 में वो आज ही का दिन था जब सैन फ्रांसिस्को में ब्रुक्स हॉल में ओसबोर्न कंप्यूटर कॉरपोरेशन के एडम ओसबोर्न द्वारा तैयार पहले पोर्टेबल कंप्यूटर का नमूना पेश किया गया था। और जानते हैं इसका वजन कितना था? करीब 24 पाउंड।
एंड हाइट्स ऑफ टेक्नोलॉजी अगेन, 1984 ऑन दिस डे स्यूएज़ D-11 कैरीड 3 cosmonauts along with the first Indian squadron leader Rakesh Sharma to Salyut 7.
बदलती हुई तकनीक का इस्तेमाल तो बहुत पहले से शुरू हो चुका है लेकिन अगर हम बात करें पिछले 10 सालों में या 20 सालों में जो तकनीक ने तेजी से बदलाव किया है वो अपने आप में एक इतिहास है। 1942 की बात करते हैं। आज ही के दिन जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में अमरीका पर आखिरी दौर की सैन्य कार्रवाई शुरू की थी।
1857, 3rd April, Queen Victoria was declared as Queen of India. 1992, on this day, Mahanadi Coal Fields Limited, a subsidiary of Coal India Limited, was formed.
1999 में वो आज ही का दिन था जब भारत ने अपना पहला वैश्विक संचार उपग्रह INSAT-1E अंतरिक्ष में भेजा था।
And in fact, India's INSAT-2E multi-purpose telecommunication satellite was successfully launched from the Korea Space Station in French Guiana in the year 1999 on this day.
और सरबजीत, 1984 के आज ही के दिन को बहुत हम गर्व के साथ याद करते हैं तो क्योंकि भारत के स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को सोवियत यान में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने के लिए आज ही के दिन चुना गया था। तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से और अब याद करते हैं उन व्यक्तित्वों को जो कहीं ना कहीं आज के दिन से जुड़े हुए हैं और हम उन्हें याद करेंगे। आज प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर की पुण्यतिथि है। किशोरी अमोनकर ने अपने शास्त्रीय संगीत के बल पर दशकों तक हिंदुस्तान के संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखी। 10 अप्रैल 1932 को मुंबई में जन्म हुआ था। जयपुर अतरौली घराने की प्रमुख गायिका थी। किशोरी अमोनकर की मां भी एक सुप्रसिद्ध गायिका थी जिनका नाम था मोगूभाई कुर्दीकर। उन्होंने कई घरानों के संगीत शिक्षकों से प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रमुख रहे आगरा घराने के अनवर हुसैन, ग्वालियर घराने के शरद चंद्र आरोलकर और बालकृष्ण बुबा परवर्तर शामिल हैं। आगे बात करने से पहले उनकी सुरीली आवाज में ये एक मधुर राग सुनते हैं। किशोरी अमोनकर की प्रस्तुतियां ऊर्जा और सौंदर्य से भरी होती थी। किशोरी अमोनकर ने फिल्म संगीत में भी रुचि ली और उन्होंने 1964 में आई फिल्म गीत गाया पत्थरों में गाने भी गाए। किशोरी अमोनकर की आवाज भी चली गई थी। उनकी आवाज को वापस आने में लगभग 2 साल लगे थे और किशोरी जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें इस वजह से करीब 9 साल गायन से दूर रहना पड़ा। वो फुसफुसाकर गाती थी लेकिन उनकी मां ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा कि मन में गाया करो, इससे तुम संगीत और संगीत तुम्हारे साथ रहेगा। ये जो सुरीली आवाज आप सुन रही हैं, ये किशोरी अमोनकर के ही गले से निकली हुई है और बहुत ही खूबसूरत थी उनकी आवाज। सन 1957 से किशोरी अमोनकर ने स्टेज प्रस्तुति देनी शुरू की थी और उनका पहला स्टेज कार्यक्रम पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, जो बहुत सफल रहा। पुरस्कारों की बात करें तो किशोरी अमोनकर को 1985 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1987 में पद्म भूषण, 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और अपनी तमाम संगीत यात्रा को छोड़कर किशोरी अमोनकर आज के दिन 2017 में 84 वर्ष की आयु में इस फानी दुनिया को छोड़कर चली गई।
We are also paying tributes today to Henry Graham Greene, an English writer and journalist regarded as one of the leading novelists of the 20th century. Greene acquired a reputation early in his lifetime as a major writer both of serious Catholic novels and of thrillers. Through 67 years of writing, which included over 25 novels, he explored the conflicting moral and political issues of the modern world. He was awarded the 1968 Shakespeare Prize and the 1981 Jerusalem Prize.
आज प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार राधेश्याम खेमका की भी पुण्यतिथि है। राधेश्याम खेमका गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे और 38 सालों तक गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण का उन्होंने संपादन किया था। उन्होंने कल्याण का संपादन नवंबर 1982 के संस्करण से लेकर 2021 तक किया था। राधेश्याम खेमका का जन्म 1935 में बिहार के मुंगेर में हुआ था और साल 1956 में राधेश्याम खेमका अपने परिवार के साथ वाराणसी में रहने लगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर किया और फिर उन्होंने साहित्य रत्न की उपाधि प्राप्त की। उनके संपादन में कल्याण के बात करें तो 40 वार्षिक विशेषांक, 460 संपादित अंक प्राप्त हुए और इस दौरान कल्याण ने 9,56,46,000 प्रतिज्ञाएं जो प्रकाशित की गई।
नवीन, एंड ऑफ कोर्स वी कैन नॉट फॉरगेट बट मेंशन द नेम ऑफ द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज। टुडे इज हिज डेथ एनिवर्सरी। अ मेंबर ऑफ द भोंसले मराठा क्लैन, शिवाजी कार्व्ड आउट हिज ओन इंडिपेंडेंट किंगडम फ्रॉम द डिक्लाइनिंग आदिलशाही सल्तनत ऑफ बीजापुर दैट फॉर्म द जेनेसिस ऑफ द मराठा एम्पायर। In fact, in 1674, he was formally crowned the Chhatrapati of his realm at the Raigarh Fort. We are also remembering today Raymond Stanley Nobel, an English jazz and big band musician who was a band leader, composer and arranger, a radio host, indeed a very, very talented and a well-versed personality. And in fact, he is best known for his signature tune, The Very Thought of You. We have this for you.
आज सवेरे में अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की जिनकी आज जयंती है या जन्मदिन है। आज का दिन बहुत से व्यक्तित्वों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे पहले बात सैम हॉर्मोन्स जी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ। आज भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की भी जयंती है। मानेकशॉ का जन्म आज ही के दिन 1914 में अमृतसर में एक पारसी परिवार में हुआ था। देहरादून के इंडियन मिलिट्री अकादमी के पहले बैच के लिए वो चुने गए 40 छात्रों में से एक थे, जहां से वो कमीशन के प्राप्त करने के बाद भारतीय सेना में भर्ती हुए। मानेकशॉ भारतीय सेना के अध्यक्ष थे, जिसका नेतृत्व भारत ने सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त करके किया था और जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। अदम्य साहस और युद्ध कौशल के लिए मशहूर भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्णिम दस्तखत करने वाले सबसे ज्यादा चर्चित और कुशल सैनिक कमांडर, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित रहे। 40 साल का उनका एक सैनिक जीवन रहा और उन्होंने बहुत कुछ देखा और बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की। आपने सैम मॉनिकशॉ पे बनी फिल्म भी जरूर देखी होगी, लेकिन अब जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उनकी आवाज में वो गौर से सुनिए।
इफ लीडर्स आर नॉट बोर्न कैन लीडर्स बी मेड। इट इज माई व्यू दैट गिव मी अ मैन विथ रीजनेबल कॉमन सेंस एंड डिसेंसी यू कैन मेक अ लीडर आउट ऑफ हिम। What are the attributes of leadership? There are many attributes. The cardinal attribute for leadership is professional knowledge and professional competence. Now you will agree with me that you cannot be born with professional knowledge. Even if you are the child of a minister, the son of a member of parliament, or the progeny of a field marshal.
Soldiers nahi dunga, sir. हाँ, अगर मिस्त्री या मजदूर चाहिए तो मैं एक दो कॉन्ट्रैक्टर्स को जानता हूँ जिनकी मैं सीजीएस से बात करवा सकता हूँ। वो शायद उन्हें फर्क भी समझा दें कि मिस्त्री क्या करते हैं और सोल्जर्स क्या।
यू जस्ट हर्ड द एक्सपर्ट्स इन द वॉइस ऑफ फील्ड मार्शल सौ मानिकशॉ।
आज हिन्दी साहित्य के निर्मल वर्मा की भी जयंती है। निर्मल वर्मा का जन्म आज ही के दिन 1929 में शिमला में हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार थे, रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लालटीन की छत, वो दिन। निर्मल वर्मा के चर्चित उपन्यास से आज हम उन्हें भी याद कर रहे हैं।
वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग टूडे जॉर्ज हर्बर्ट, एन इंग्लिश पोएट, ओरेटर एंड प्रीस्ट ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। हिज पोएट्री इज एसोसिएटेड विद द राइटिंग्स ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स and he's recognized as one of the foremost British devotional lyricists.
आज प्रसिद्ध साहित्यकार मनु भंडारी की भी जयंती है। मनु भंडारी का जन्म आज ही के दिन सन 1931 में भानपुरा में हुआ था। मनु भंडारी ने कहानी और उपन्यास दोनों विधाओं में अपनी कलम चलाई थी। मनु भंडारी ने पढ़े लिखे आधुनिकता पसंद लोगों की दुख भरी प्रेम गाथा भी लिखी और वो उपन्यास था एक इंच मुस्कान। उन्होंने ये उपन्यास राजेंद्र यादव के साथ भी लिखा था। और हम आपको बताते चलें कि उनके बहुत से उपन्यास थे, लेकिन एक उपन्यास जिस पर फिल्म बनी थी वो था यही सच है, और उस पर फिल्म बनी थी रजनीगंधा। एक खूबसूरत सा गीत उस फिल्म का भी सुनते हैं।
Time to wish birthdays, great birthdays to some great celebrities. Prabhu Deva, today is his birthday today. Indian dance choreographer, film director, producer and actor who has worked predominantly in Tamil, Hindi, Telugu and Kannada language films. We're also wishing many good wishes to Jayaprada on her birthday today, the great Indian actress who has worked both in Telugu and Hindi film industry.
और चलते चलते हम याद करेंगे प्रसिद्ध भारतीय गजल गायक और पार्श्व गायक हरिहरन को। आज उनका भी जन्मदिन है। बहुत ही खूबसूरत सा गीत उनकी आवाज में, आइए सुनते हैं।
ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम
आज सवेरे के आज के संस्करण में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का ये संस्करण बहुत पसंद आया होगा। मैं नवीन और सरबजीत अपनी एडिटर दीपमाला और प्रोडक्शन असिस्टेंट मीनाक्षी के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं।
यस लिसनर्स, बट डू स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, आवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:30 AM। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।